सुदनन्दन व्रज जनरञ्जन जसोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जसोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupad, 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 Prabhupad.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत गुडी वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री श्री राधा दामोदर जी की जय। श्री श्री जसोदा दामोदर जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये श्रुणतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 15। अध्याय की शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश। श्लोक संख्या है 68। अभी सुनाई पड़ रहे हैं पीछे। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। सेट करना चाहिए पहले, पीछे आवाज आ रहे हैं? नहीं नहीं आ रहे हैं। ओके, समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। बोलिए, अहं पुरा भवम कस्सेत गंधर्व उपबर्हण नम्नातिते महाकल्पे गंधर्वाणं सुसम्मत अहं पुरा भवं कस्से गंधर्व उपवर्हण नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणं सुसम्मत अहं परा पुरा भवं कस्से गंधर्व उपवर्हण नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणं सुसम्मत अहं पुरा भवं कस्से गंधर्वं उपवर्हण नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणं सुसम्मत। एक इस तरफ एक मत। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अभी सुनाई पड़ रहा है पीछे? नहीं, इस तरफ क्या हुआ? थोड़ा सा एडजस्ट करो। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। अहम में पूरा पूर्व जन्म में अभवम था कश्चित गंधर्व गंधर्व लोक के निवासियों में से एक उपवर्हण नामना नाम से अतीते बहुत काल पूर्व महाकल्पे ब्रह्मा की जीवन में जो महाकल्प कहलाता है। ध्यान रखिए, महाकल्प ये करेक्ट पूरा ब्रह्मा जी की जीवन की अवधि। गंधर्वाणम गंधर्वों में सुसम्मत अत्यंत सम्मानित व्यक्ति। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। बहु समय पूर्व एक अन्य महाकल्प ब्रह्मा का युग में मैं उपवर्हण नामक गंधर्व की रूप में था। अन्य गंधर्वों में मेरा अत्यधिक सम्मान था। ध्यान पूर्वक सुनिए तात्पर्य। श्री नारद मुनि अपने विगत जीवन से व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मा की पूर्व जन्म काल में श्री नारद मुनि गंधर्व लोक की निवासी थे, किंतु दुर्भाग्य से वे गंधर्व लोक जहाँ की निवासी अत्यंत सुंदर तथा कुशल गायक होते हैं। उनके इस उच्च स्थान में गिर गए और शूद्र बने, जैसा कि आगे बताया जाएगा। फिर भी भक्तों की संगति करने से वे गंधर्व लोक से भी अधिक भाग्यवान निकले। यद्यपि प्रजापतियों ने उन्हें शूद्र बनने का साप दिया था, किंतु अगले जन्म में वे ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो साप कभी कभी आशीर्वाद हो जाता है। श्रील माध्वाचार्य ने महाकल्प शब्द को अतीत ब्रह्मकल्प के रूप में ग्रहण किया है। ब्रह्मा की मृत्यु कोई करोड़ वर्ष के पश्चात होती है। ब्रह्मा की एक दिन का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 8:17 में हुई है। सहस्रजुग पर्यन्तम् अहर्जत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम् जोग सहस्रांता तेहो रात्रि विदो जनाः। मनुष्य की गणना से ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के जोग के बराबर होता है, और इतनी ही लंबी उनकी रात्रि भी होती है। भगवान श्री कृष्ण लाखों वर्ष पूर्व की घटना को स्मरण रख सकते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि जैसे उनकी परम भक्त भी लाखों वर्ष पुराना जीवन स्मरण रख सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नम महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पादाब्जं दास्यं मह्यं प्रदीयतं। महाभावस्वरूपां त्वं कृष्ण प्रिया बरीयसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज की जो हम प्रसंग चर्चा करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जो देह धारण किए हैं भाई शरीर, ये शरीर किसी के नियंत्रण में है। और पहला फैक्टर है जो इसके नियंत्रण में शरीर है वो है काल, दूसरा है कर्म और तीसरा है गुण। కాళకర్మ గుణాధీనం దేహాయం పంచభౌతికం. ये देह जो पंचभौतिक शरीर है, काल कर्म और गुण के अधीन है. तो काल सबको नष्ट कर देता है और भगवान कहते हैं कि काल रूप में मैं स्वयं विद्यमान हूँ. कालस्मि लोकस्य कृत प्रवृद्ध. तो ये जो काल है ये सबको नष्ट कर देता है, परंतु वो व्यक्ति काल को जीत लेता है, कालजयी होता है, जो कृष्ण की शरण में रह जाता है, क्योंकि कृष्ण ही काल के अधीश्वर है. तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को वर्णाश्रम विषय उपदेश देते हुए उस प्रसंग को समाप्त करते हुए कहते हैं कि देखो, तुम लोग के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, महती कृपा हुई भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि तुम बड़े बड़े विपत्तियों को कृष्ण समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉल्ट है, हम क्या कर सकते हैं. परंतु जो श्रोता भी सुन रहे हैं उनको बाधित ना करे, वो एडजस्ट करना चाहिए. लेकिन आगे आप लोग आ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, जिनको सुनना है तो आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ. उससे समय तो इससे ही बात करने में चल जाएगा कि नहीं, मैं क्या कर सकता इससे. इससे लगता है कि माइक को मुझे ही निगल लेना चाहिए. क्या अभी आ रहा है कुछ, आ गया? पीछे सुनाई पड़ रहे हैं सबको, माताएं को? नहीं, तब भी नहीं आ रहे. तो गला के साथ सेट करना पड़ेगा ना. हरे कृष्णा. कृष्णा हॉल में तो सुनाई पड़ रहा था ना आपको, पड़ रहा है, लेकिन पीछे नहीं पड़ रहा है ना. उनका कान को सेट करना पड़ेगा आपके साथ. एनीवे, अभी समय को नष्ट ना करें. जिनको सुनाई पड़ रहा है तो बहुत भाग्य की बात है, नहीं सुनाई पड़ रहा है तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं. तो भगवान अनसरी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि भगवान के आश्रय लेकर आप लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किए हैं. और बड़ी विपत्ति क्या है? स्मृति भगवान से हटा लेना है, ये सबसे बड़ी विपत्ति है. जब भगवान की स्मृति नहीं है मन में, ये जानना चाहिए सबसे बड़ा संकट है. हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणात्. भगवान की स्मृति हो तो विपत कहां टिक सकता है. तो ये जो विपत्ति है इसको हम कहते हैं सबसे बड़ा भय, डर हम सबके साथ हैं, वो है शरीर की मौत. तो ये छोड़ने की बात, हमारी कोई स्मृति नहीं रहेगी कि हम पहले क्या किए थे, कहां पर जन्म लिए थे, मेरे घर ठिकाना कहां है, कुछ भी नहीं, हम सब भूल जाते हैं. इसलिए भगवान मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेते हैं. मृत्यु सर्व हरस्याहम. तो फिर यहां एक विचरणीय बात है. तो नारद जी कह रहे कि अहं पुरा भवं कश्चित् गंधर्वं उपवर्हण महाकल्पे. ऐसे महाकल्प ब्रह्मा जी की एक दिन को एक कल्प कहते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद कोट किए हैं, एक कल्प की अवधि होता है एक सहस्र चतुर्युग, खाली युग नहीं, एक सहस्र चतुर्युग, और ये है 12 घंटा की अवधि। सहस्र युग पर्यंतम अहर्जत ब्रह्मण विदु, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जी की, अरह अरह मतलब दिन के समय, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र मतलब हजार, चतुर्युग, अहर विदो मतलब लोग जानते, और रात्रि युग सहस्रांत, और रात्रि भी सहस्र युग है, तो जानकार व्यक्ति ही कहते हैं, विद्वान व्यक्ति। तो हम केवल एक शरीर छोड़ने के बाद हमको याद नहीं रहता है, एक दिन व्यतीत होने पर पिछले दिन इस समय हम क्या किए थे ये भी याद नहीं रहता है, फिर कल्प की बात क्या कहे। और ये कल्प नहीं है, महाकल्प, ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा की परिवर्तन हो गया, महाकल्प। ऐसे दो परार्ध होता है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, तो दोनों अवधि को मिलाकर के ब्रह्मा जी की 50-50 100 साल होता है। तो एक होता है ब्राह्म कल्प, जिस समय ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, और दूसरा कल्प जो होता है इसको कहते हैं 12 कल्प, श्वेत वराह कल्प। तो ये दोनों कल्प जो है, कल्प और विकल्प, 50-50 साल की अवधि है ब्रह्मा जी के, तो इसमें कितनी समय व्यतीत होता कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा वो इतने ड्यूरेशन। लेकिन नारद जी अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनाए रखे, ये कैसे स्मृति बनी रहती है, हम इस जन्म में जो किए हैं मृत्यु के बाद तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरस्याहम काल कलयताम महम, परंतु स्मृति कैसे बनी रही। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की स्मृति भी अविचल है। अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरी बहुत ऐसे जन्म व्यतीत हो चुका है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्व परंतप, मैं सब जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो उसी प्रकार जो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है उनकी भी स्मृति बनी रहती है। ये जो स्मरण है, ये स्मरण ही शरीर को प्रदान करता है, और जिस समय स्मरण केवल कृष्ण के लिए होता है तो कृष्णमय हो जाता है, तो फिर शरीर नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो जिस प्रकार स्मरण करता है, जंग जंग व्यापी स्मरण भाव, भाव के अनुसार स्मरण होता है, और ये कलेवर को उसी समय हम त्याग करते हैं, त्यज्यन्ते अन्ते कलेवरम, और उसी स्मरण उसी भाव के अनुसार तंग तम एति, उसी उसी भाव जिस प्रकार हम स्मरण किए, तंग तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उस भाव को लेकर हम यात्रा करते हैं। हमारा शरीर की यात्रा होता है भावमय, भाव ही भव कारणम। तो इसलिए ये भाव को भगवान प्रिजर्व करते हैं। अर्जुन ने कहा कि आप कैसे स्मरण रखें, तो सिंपल उत्तर है कि आप ये शरीर परिवर्तन किए, लेकिन मैं तो शरीर परिवर्तन नहीं किया हूं, मेरा तो वही सच्चिदानंद शरीर है। फिर 6 अध्याय की अंतिम 5-6 श्लोक पहले कि किस प्रकार फिर हम अगले जन्म ग्रहण करते हैं अपने योग की अभ्यास के द्वारा। भगवान कहते हैं अथवा जोगिनं एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम तत्र तंग बुद्धि संजोगम लभते पौर्वदेहिकम जतते च तत भूय संसिद्धौ कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव अढ़ियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्त ब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नादेतमानस्तु योगी संसिद्ध कर्मिसम अनेक जन्म संसिद्धि ततो जाति पराम गति। तो भगवान पहले तो कह दिए कि सूची परिवार में जन्म लेता है प्राप्य पुण्य कृतान लोकानुषितम सस्वती समा सुचिनंग सिमतंग गेह योग भ्रष्ट विजायते। लेकिन जो योग में उन्नत होते हैं दृष्टांत स्वरूप प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखे हैं कौन भरत महाराज उन्होंने के राजा थे लेकिन निष्ठा के साथ भजन किए परंतु भजन के समय में भी बहुत परीक्षा होती है पग पग पर विपत्तियां हैं पदम पदम जत विपदम योगी को बहुत सावधान बरतना चाहिए। साधक यदि सावधानी हटा देता है तो दुर्घटना निश्चित होती है इसलिए बुद्धि को संजत करने से वो संजोग होता है तत्रतम बुद्धि संजोगम। भरत महाराज दृढ़ता के साथ भजन किए थे परंतु एक अर्चना हो गई थी उन्होंने एक हिरण के प्रति उनके आकर्षण हो गया था उससे फिर नेक्स्ट जन्म भी हुआ महाराज भरत फिर हिरण फिर हुए जड़ भरत। तो यहां भी नारद मुनि अपने 3 जन्म की बात कर रहे हैं करेक्ट ये पहले जन्म की बात अभी कह रहे कि अहं पुरा भवम कश्चित गंधर्वं उपवर्हण मैं एक गंधर्व था और मेरे नाम था उपवर्हण अर्थात वो गंधर्व लोक की निवासी थे। भगवत गीता में भगवान गंधर्व में श्रेष्ठ कौन है गंधर्वाणं चित्ररथ सिद्धानं कपिलो मुनि तो गंधर्व में चित्ररथ को कह रहे नारद को क्यों नहीं बोले क्योंकि नारद थे सर्वश्रेष्ठ थे ये भी कह रहे हैं अगले श्लोक में रूप पेशण माधुर्यं सौगंध्य प्रिय दर्शनं स्त्रीणं प्रियतमं नित्यं मतः स्वपुरलंपटः वो सर्वश्रेष्ठ गंधर्व थे उनकी समान कोई सुंदर नहीं था गंधर्व लोक में और भी वर्णन है माधुर्य सौगंध्य उनकी शरीर से सुगंध ही निकलता था और ऐसे रूप को देख कर कि स्त्रीणां प्रियतमम स्त्रियां उनके पीछे पड़ जाते ऐसे गान बजाने वाले होते हैं ना कुछ कलाधरी गलाधरी तो वो निश्चित रूप से वो स्त्रियों को आकर्षित करते हैं गला के द्वारा। लेकिन सावधान रहना चाहिए जब हम गुण कीर्तन करते हैं भगवान की गुण कीर्तन करते हैं एक निष्ठा रहना चाहिए सोई रसना जो हरि गुण गाए हरि की केवल कीर्तन हो गुण हो उससे भगवान हरि खुश हो जाए। तो पहला ये जो गंधर्व के रूप में वो गए थे कहां पर ब्रह्मलोक में गए थे तो ब्रह्मलोक में प्रजापतियों की सभा चल रहा था और प्रजापतियों ने इनवाइट किए थे गंधर्वों को और ये भी पहले सब लिस्ट बनाते हैं ना क्या क्या सब आयोजन है प्रोग्राम के बारे में ये भी दिए थे कि यहां पर केवल भगवान हरि की कीर्तन होगा। परंतु नारद जी जब ब्रह्मलोक में गए उस हरि सत्र में उन्होंने स्त्रियों के द्वारा आवृत थे क्योंकि स्त्रियां उनके पीछे पीछे गाने वाले थे तो वो जब सभा में उनको सम्मान दिया गया तो उनके अंदर थोड़ा घमंड उत्पन्न हुआ और स्त्रियां उनको देख करके उनकी मुस्कान भर गया, स्मित हास्य। परंतु नारद जी जो उपवर्ण थे वो प्रजापतियों को सम्मान नहीं किए थे उस समय। ये नारद पुराण में है, वर्णन है। तो उन्होंने सीधा गए अपने आसन पर बैठ गए, देखो मैं कितना सम्मानित व्यक्ति हूं। इसलिए कभी कभी घमंड वा गर्व ये व्यक्ति को कैसे पतन कर देता है। श्रीधर स्वामी इस श्लोक के टीका में ये लिखे हैं कि महत्पुरुष के प्रति अनादर भाव से उच्च स्थिति में रहते हुए भी व्यक्ति पतित हो जाता है। और इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए नारद जी 5.5 श्लोक अपने बारे में बता रहे हैं। हालांकि इसके पहले पहला स्कंद में उन्होंने व्यासदेव को बताए थे कैसे मेरी भागवतम के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, लेकिन ये बात नहीं बताए थे। इसलिए सिचुएशन के अनुसार उतनी ही उपदेश देना चाहिए जितना प्रयुज्य है। वो व्यासदेव को प्रेरित करना चाह रहे थे कि आप उस महापुराण की रचना करो, तो फिर वहां पर उन्होंने दृष्टांत दिए थे। लेकिन यहां इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं कि देखिए कि मैं कैसे पतित हो गया, मेरी पतन का कारण क्या था। ये पतन के ही कारण था दंभ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य एवच अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। ये आसुरी संपद है, इसको लेकर के कोई प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि दैवी प्रकृति आने पर ही भगवत भक्ति कर सकता है। इसलिए कुंती महारानी भी कह रही है कि प्रभु आपकी भक्ति करना सरल सुलभ है, परंतु वो व्यक्ति आपकी भक्ति की प्रति उनकी अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। नौ वे अरहति अभिधातुं वे, वो कभी आपकी चरण में शरण ग्रहण नहीं करते हैं, आपकी भक्ति के प्रति उन्मुख नहीं होते हैं। कौन व्यक्ति? जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्री भी रेधमान मदह पुमान नौ वे अरहति अभिधातुं वे तुम अकिंचन गोचरा। उच्च कुल में जन्म लेने से, ऐश्वर्य की दंभ उत्पन्न होने से, पढ़ा लिखा होने से, कुछ पोजीशन मिलने से और सुंदरता भी, ये बहुत खतरनाक है। कहते धान की मद तक कभी दूर नहीं होता है। ये महीना तक तो हम चर्चा करते, वही कुबेर के पुत्र का जो धन मद, ये केवल साधु की अनुकंपा होने से ही दूर होता है। और सुंदरता के अभिमान सबके अंदर होता है, इसलिए तो सब फेसबुक सब बुक कर दिए हैं चेहरा देखने के लिए। इतने नहीं मिरर पर संतुष्ट हो गए, सब फेसबुक पर डाल देते हैं, भाई देखो ये क्या है। उस पुराने जमाना में भी ऐसे के व्यक्ति था जो सुदर्शन नामक गंधर्व और क्या होते हैं विद्याधर, ये भी गान कला में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। उस समय की बात है जब नंद महाराज अंबिका वन में गए थे शिव जी की आराधना करने के लिए, तो उस समय हठात एक सर्प ने निगल लिया रात्रि को। तो नंद महाराज चिल्लाने लगे कृष्णा कृष्णा अरे बेटा बचाओ, तो सब जग गए क्या हुआ महाराज क्या हुआ ना, अरे सर्प निगल रहा है। तो उसके पहले सब ने जलता हुआ जो लकड़ी है आधा जला था, क्योंकि रात्रि में अंधकार था, शिवरात्रि के समय है अंधकार चतुर्दशी, तो जलता हुआ लकड़ी लेकर पीटने लगे। लेकिन क्यों सर्प क्यों छोड़े, वो निकलते जा रहे। और कृष्ण आए तुरंत चरण स्पर्श कर लिए वो तुरंत एक सुंदर शरीर वाले एक विद्याधर बन गए। कृष्ण भाई ऐसे एक महापुरुष आपको कैसे सर्प की शरीर मिला था? तो अपने पूर्व जन्म की बात बताने लगा, स्मृति तो थी। उन्होंने कहा मेरी सुंदर शरीर, जैसे नारद जी कह रहे कि मेरी शरीर से भी महक निकल रहा था, उस ये से आर्टिफिशियली सेंट पेंट डाल के नहीं जाते, ब्यूटी पार्लर में सजाते नहीं, उनके शरीर स्वाभाविक रूप से सुंदर और सुगंधित होता है। तो कहे कि उसी प्रकार मैं भी स्त्रियों के साथ जा रहा था और देखा अंगिरा ऋषि आ रहे हैं। अंगिरा ऋषि देखने में व्यासदेव जैसे हैं, काला हैं, और उनको देख करके मैं हंस पड़ा। अन्य कोई पुराण में वर्णन है कि शायद अष्टवक्र ऋषि हैं, उनकी आठ टेढ़ा हैं, ऐसे चल रहे थे। तो उस ऋषि को अपमान किया, रे महाराज कैसे शरीर है, कौन से मार्केट से खरीद किए हैं शरीर? तो उससे अंगिरा ऋषि ने उनको साफ दे दिए, तुम सर्प बन जाओ। तो इसी प्रकार जो जन्मा ऐश्वर्य श्रुत श्री और तपह बड़ा और भी है आठवां स्कंद में, ये व्यक्ति के अंदर घमंड को बढ़ाता है, गर्व पैदा करता है, अपने स्थिति को हम भूल जाते हैं। इसको कहते इंटॉक्सिकेशन, मद। मद का भी दूसरे अर्थ में हम कहते हैं अल्कोहल बाय इंटॉक्सिकेशन। ऐसे ही व्यक्ति जब वह इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है तो भूल जाता है अपने स्थिति क्या है, कभी नाली में गिरता है, कभी कुछ बोलता है पागल की तरह। तो इसी प्रकार नारद जी भी इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे, क्योंकि ये जो काम है बुद्धि विपर्जयम, अपने बुद्धि को स्मृति को नष्ट कर देता है। इसलिए आदो पहले बुद्धिमान व्यक्ति को इस इंद्रियों को संजत करना चाहिए। तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतवर्षवः पापनं प्रजही हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। आपके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले हैं। इसलिए व्यक्ति कहते द्रुतम तेजेत, इसको बहुत तेजी के साथ त्याग करना चाहिए। और ठीक है बाद में ठीक सुधर जाएगा, नहीं, इसके लिए अब से ही कोशिश करना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्श शब्द से इंद्रिय आकर्षित हो जाता है, इसलिए जिसकी इंद्रिया संयमित नहीं है वो कोई भी योग में स्थित नहीं हो सकता है। असंजत इंद्रियम आत्मानम, क्या है असंजत इंद्रियम, दुष्प्राप्यं इति मे मति वस्यात्मनां तु जततांग सक्यं प्राप्तुं उपाय। तो कौन बोला? गुड, बहुत अच्छा है। कहते असंजता इंद्रियम, जिसकी इंद्रिय काबू में नहीं है। कहते दुष्प्राप्यं इति मे मति, ये मेरे मत है, वस्यात्मनां, उसके बस पर है, वो निश्चित प्राप्त करेगा। इसलिए भक्त इंद्रिय की वशीभूत नहीं होते हैं, भक्त भगवान को वशीभूत कर देते हैं। वशी कुर्वन्ती मां भक्त्या, ये भक्ति को ले लेते हैं जिससे कि भगवान वशीभूत हो जाए। इंद्रिया क्या करेंगे, आगे इंद्रिय के स्वामी तो हैं और ऋषि के उसको वशीभूत कर लिए, इंद्रिय क्या बिगड़ेगा। तो इसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं मेरे इंद्रिय भटक गया और वहां मैं क्या किया, आगे वो बताएंगे कि मैं स्त्रियों को रिझाने के लिए जो सत्र आयोजित हुआ था हरि को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि हरि संतुष्ट होने पर सब संतुष्ट हो जाते हैं। अथ पुंभी दिजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह सुनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। धर्म की एक मजहब है, एक लक्ष्य है जिससे कि हरि संतुष्ट हो जाए। और जब मन स्मृति हरि में हर जाता है तो फिर हरि संतुष्ट होते हैं। इसलिए हरि का मतलब है जो हमारे चित्त वृत्ति को हर ले। तो मनुष्य इसी प्रकार संसार चक्र में भटकता रहता है। यही कारण है क्योंकि अपने इंद्रियों को वशीभूत नहीं करता है, अपनी अहंकार की चौपट में आ जाता है। इसलिए वृत्तासुर प्रार्थना किए थे, वो कैसे, वो भी पतित हो गए थे ना, चित्रकेतु तो महाराज थे, संकर्षण की आराधना किए और साक्षात दर्शन भी किए। संकर्षण ने ऐसे उनको जान दिए, विमान सर्वत्र उड़ सकते थे, सर्वत्र भ्रमण कर सकते थे, और वो भी स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। शिव जी की गोद में माता पार्वती को देख करके उन्होंने थोड़ा सा चुटकुला कहा, हालांकि वो तो विनोद बस कहे थे, लेकिन पार्वती को सहन नहीं हुई, साफ देख उनकी भी इस प्रकार दुर्गति हुई, असुर जनी प्राप्त हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, साधक ने जिस प्रकार साधना किए हैं वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान आश्वस्त करते हैं, नए हम विक्रम नाशस्ति अभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सुअल्प अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये बड़े भय जो है कि जिसमें स्मृति नष्ट हो जाता है, ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है, अन्य आदि पशु जोनी, उससे भगवान बचा देते हैं, क्योंकि भक्ति की है। भक्ति पुनान्ति मन निष्ठा, क्योंकि ये थोड़े से भी भक्ति भी भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। लेकिन भक्तों को हमेशा ही एक मर्यादा में रहना चाहिए। मैं एक भक्त से पूछा था, भाई मर्यादा किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मर्यादा स्थापन लागी साधुर व्यवहार, मर्यादा त्यागिले यह लोक पर लोक जाए ना स, ऐसे कुछ है पद कि यह लोक और परलोक भी नष्ट हो जाता है। इसलिए साधु अपने मर्यादा को स्थापन करते हैं। तो मैं कहा, मर्यादा क्या है? कहे कि एक शब्द है, म का मतलब है महान, और ज्यादा मतलब ज्यादा देना है, महान पुरुष को ज्यादा दे देना चाहिए, सम्मान दे दो, सब दे दो। लेकिन मर्यादा के वास्तविक अर्थ यही है। ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताए हैं, चौथा स्कंद की आठवां अध्याय 34 नंबर श्लोक, जब गुस्सा होकर के अपने घर से वो निकल गए, रास्ते में नारद जी मिले उनसे और पूछे, अरे बेटा क्यों गुस्सा कर रहे, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मुझे जंगल जाना। क्यों? छोटा बच्चा है, जंगल क्यों जाओगे? नहीं, मुझे हरि आराधना करना है यही उम्र में। अरे ये तो समय है, खेलने के समय है। नहीं, मुझे खेलने के लिए नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे तो बहुत खेल कूद में समय बिताते हैं, आनंद में रहते हैं, क्यों गुस्सा हो गया? कुछ कुछ लोग कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। समय आने पर पता चल जाएगा उनका टेस्ट। एक व्यक्ति कहता था कि मुझे लोग बहुत तारीफ करते हैं, कहते क्यों पता है? कि मेरे पास दो गुण है। क्या है? कहते मैं एक बार जिसको सुनता हूं बहुत तुरंत याद हो जाता है। क्या? एक बार जिसको सुनूंगा तुरंत याद हो जाता है। दूसरा सोच करके बताऊंगा। ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कहते हैं, भाई मुझे क्रोध नहीं आता है, क्योंकि ये संसार में कोई क्रोध से बच नहीं सकता है। संसार दुख जड़ दो पतितस्य काम क्रोधाधिनक्रम गरै कबली कृतस्य दुर्वासना निगडस्य तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलम्ब। हमें संसार के दुख में सब हम पतित हो चुके हैं, क्यों न काम ही हमको गिरा दिया है, और उसमें क्रोध मगरमच्छ व घड़ियाल ये हमको निगल लिया है। क्रोध दुर्वासना, इसमें वासना है, दुर्वासना है, अच्छी वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, दूसरे की गलती ढूंढना, दूसरे की कमी देखना, दूसरे के दुख में सुख की अनुभव करना, ये तो है। इसलिए मैं आश्रयहीन हूं, मुझे बचाइए। इसलिए इस क्रोध से, काम से बचने के लिए, इस ताप से बचने के लिए एक उपाय ध्रुव महाराज बता रहे हैं, नहीं सॉरी नारद जी ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, क्या है? अनुक्रोशम मुदम लिप्सेत गुणाधिकान, नहीं क्या, हाँ अनुक्रोशम गुणाधिकम मैत्री समानत अन्य चेत न तापेई अभिभूयते। ये बात कह रहे हैं, जो हमसे ज्यादा गुणवान है उनको सम्मान देना चाहिए, खुश होना चाहिए उनको गुण के देख कर, बहुत अच्छा है व्यक्ति। अनुक्रोशम मुदंग लिप्सेत, और जो हमसे छोटे हैं हम इसको क्या करते हैं, घृणा है, इससे बहुत जूनियर है ये, हम हमारे सामने इसको इतना बकाते हैं। कितने भी सीनियर हो जाए व्यक्ति का वही बडिल कंसेप्ट रहता है, सीनियर जूनियर, कैसे निकलेंगे इस कारागार से। तो हम छोटे के प्रति घृणा करते हैं, परंतु नारद जी कह रहे हैं क्या है, उसके प्रति दया करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दया, और जो बराबरी है उनके साथ क्या करना चाहिए, मैत्री समानत अन्य से। हमारी खूबी है, हम हमेशा ही देखते हैं वो किस चीज में कमी है हमसे, कंपैरिजन, उम्र से कमी है, सीनियरिटी में कमी है, मैं पहले दिखा लिया था, कुछ कुछ ऐसे ही धन से भी तुलना करते हैं। शूद्र वृत्ति तो है, शूद्र हमेशा ही उम्र से बस शरीर से ही तुलना करता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि ये वृत्ति को त्याग करके यदि बराबरी के साथ मित्रता, बड़ों के साथ सम्मान और श्रद्धा सेवा भाव, और छोटे के प्रति दया व करुणा रखता है, उसको कभी काम क्रोध आदि ताप सता नहीं सकता है। मदाश्रया कथा मृष्टम श्रुणन्ति कथयन्ति च तप्यन्ति विविधा तापाना एतत् मद्गत चेतसा। कपिल भगवान भी कहते हैं अपने माँ को, कभी उसको ताप सता नहीं सकता है, उसकी स्मृति मेरी प्रति बनी रहेगी। इसलिए कपिल भगवान तीसरा स्कंद की 25वां अध्याय श्लोक 19 से भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हुए सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदम 25 श्लोक तक, लगभग 7 श्लोक में भक्ति की महिमा वर्णन करते, उसमें से एक ही श्लोक यही था। अगर यदि कोई साधु की सेवा करने में तत्पर हो जाता है, उसकी स्मृति व उनकी जो भाव है माया की ओर कभी आकर्षित नहीं हो सकता है। ये कपिल भगवान कह रहे कि देखो ये साधु संघ की महिमा है। असेवयं प्रकृति गुणानं ज्ञानेन वैराग्य बृजुं भृतेन जोगेन मय्यार्पति पतया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिवावरुन्धे भक्त्या पुमाञ्जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्टं श्रुतानमद्र चनानुचिन्तया चित्तस्य जतो ग्रहणे जोगजुक्त जति सतेर जुवि जोगमार्गै कते रजु भी सिद्धा सड़क रास्ता है भक्ति योग क्या है कते सतंग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तत्जो षडंगासु अपवर्गवत्पनी श्रद्धा रतिरि भक्ति अनुक्रमिष्यति। इसमें श्रद्धा है रति भी उत्पन्न हो जाती है और भगवान के प्रति अनन्य प्रीति उत्पन्न होता है। इसलिए इसको जोषणाम जैसे स्त्री के साथ कामी पुरुष लंपट पुरुष रमण करता है उसी प्रकार साधु के साथ रमण करना पड़ता है। किस प्रकार उनकी कथा को श्रवण करके मन में रमाना चाहिए, नहीं तो ये रमण रीति नहीं हो सकता है ना, हम रमण रीति में नहीं रह सकते, रोमिंग लगेगा मन में फिर। इससे रमण करना होता है। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, रमण करना पड़ता है। तो इस कथा को बार बार चिंतन करने से स्वाभाविक रूप से उनकी ज्ञान की उद्भासित होता है और इंद्रिया उनकी शिथिल हो जाता है और ये संसार के प्रति सुख भोगने की इच्छा ढीली पड़ जाती है। इसको कह रहे हैं वैराग्य। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयज्जित जन इत्यासु वैराग्यम ज्ञानं चजत अहेतुकम। ये अहेतुकी ज्ञान होता है। यहाँ हम संसार से जो ज्ञान आहरण करते हैं उसके बदले हमको क्या मिलेगा, धन बा कुछ मान, परंतु अहेतुकी ज्ञान केवल कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। इसलिए इंद्रिय सुख के लिए जो जीव प्रभावित होता है, प्रह्लाद जी एक मंत्र दिए उनके मित्रों को, कहे कि देखो है मित्रों, ये सुखम इंद्रियक्यम जत्तत देह जोगिनं जोगिनाम सर्वत्रे लभत दैवात दुखम जत अजत्नतः। जैसे दुख नाचाने पर भी अपने आप स्वाभाविक रूप से आता है, तो इंद्रियक सुख जो स्पर्श आदि सुख आप चाहते हैं कि वो अच्छी सुंदर रूपवान है इसको मैं प्राप्त करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार चेष्टा मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं है इसी प्रकार चाह ही आपकी दुख की कारण बनता है। जय ही संस्पर्श जाप होगा दुख जो नते अद्य अंतवंत कुंते नते सुरमते बुधा। बुद्धिमान जब तक कोई व्यक्ति नहीं होता है तो इंद्रियक सुख को त्यागना बहुत कठिन है। ये तो एक थ्योरी दे रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल दे रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में युक्त होकर साधु की सेवा में लगा रहता है तो अनायास प्रकृति की गुण को पार कर जाता है। वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरी सहचर्य प्राप्त कर लेता है, इसी शरीर में हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसकी स्मृति भगवान के साथ बनी रहती है तो उसको कहते हैं जातः स्मृतः। जो पूर्व जन्म की बात को याद रखता है उसको कहते हैं जातः स्मरः। और जो भूल जाना सभी जीव की स्वभाव है, लेकिन स्मृति प्रदान कौन करते हैं, भगवान। मतः स्मृतिर ज्ञान अपमानच। और जो जिसी प्रकार ये प्रकृति के गुण के साथ डीलिंग करता है उसकी फीलिंग भी उसी प्रकार होता है। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तां तथैव तथा मैं उसी प्रकार उसको हल करता हूँ। यदि भगवान को स्मरण करने के लिए कोई प्रयत्न करता है तो भगवान कहते मैं 100% उनको मैं मदद करता हूं। ददामी बुद्धि चोगंतम जे नमांग उपजान्तिते। इसमें कोई शंका नहीं है, मैं उनको बुद्धि जोग प्रदान करता हूं। और बुद्धि नहीं, बुद्धि से तो बुद्धू बना देता है व्यक्ति को, लेकिन भगवान जब जोग कथा बात कह रहे हैं कहते जिस योग के द्वारा जेनमांग उपजानते थे मुझे वो प्राप्त करता है। तो भगवान की स्मृति बनाए रखने के लिए अपने अस्तित्व को भी वो याद कर सकता है। ऐसे कई घटना है श्रीमद् भागवतम में, जैसे हम देखते हैं विदुर जी वो अर्जुमा थे, अजामिल, जड़भरत महाराज, विद्याधर, ये सब पूर्व जन्मा भगवान कभी कभी उनको स्पर्श करी, कहते अब बताओ नृगा जो हो गया था, गिरगिटी बन गया था नृगा, भगवान ने स्पर्श किया, अरे ऐसे कैसे हालत हो गया आपकी महाराज, ऐसे में था पुण्य आत्मा में मेरे नाम सर्वोच्च स्थान पर था सुपर लिस्ट में, फिर भी ऐसे गलती हो गया। इसलिए इस प्रसंग में जो 5.5 श्लोक आगे भी जो चर्चा हो गई, तो नारद जी ये बात को इस प्रसंग को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो महान संतों के प्रति अपराध करने से कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और हमारी भक्ति प्रत कैसे बाधित हो जाता है, अवरोध हो जाता है। और सबसे भैया फिर उन्होंने पहले भी बताए थे कि अहंपुरा, वो शब्द भी कहे थे व्यासदेव को कि मैं एक छोटे बालक था कि उस समय मैं संतों की सेवा किया और संत की सेवा से मुझे उनकी उचिष्ट प्राप्त करने के लिए अवसर मिला। उचिष्ट लेपानु अनुमोदिते दिजई सकृत्स्म भुंजे जदपस्त कलमिसम, और उनकी उचिष्ट को प्राप्त करके मेरे हृदय में जो काम वासना थी अहंकार आदि राग आदि वो तुरंत मिट गया। तो इसलिए संतों की सेवा में रह करके भगवान को स्मरण करना चाहिए, ये सत्संग की आवश्यकता है। सतांग प्रसंगान मम वीर्यो संविदो, समझ करके सुनने की बात समझना चाहिए, फिर हृदय और करना भगवान की रस से प्लावित हो जाता है। भवंती हृदकर्ण रसायना कथा, ये सुखा कथा नहीं है। यदि कथा किसको रसमय हो जाता है तो शायद अन्य इंद्रिय विषय के प्रति फिर आकर्षित नहीं होता है, टाइम नहीं देखते हैं भाई प्रसाद मिलेगा कि नहीं, हम लोग इतने इंद्रिय जय नहीं हुए, प्रसाद भी सेवन करना चाहिए लेकिन कथा को हृदय में स्वागत करना चाहिए ताकि हमारी पूर्व जन्म की स्मृति बने रहे और भगवान के साथ हमारे बिछड़ा हुआ संबंध को हम पुनर्जागृत कर सकते। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद।